गुरु भक्ति योग चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तर ही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। कुछ लोग कुछ वर्ष तक स्वतंत्र रीति से ध्यान करते हैं, किंतु बाद में उनको गुरु की आवश्यकता महसूस होती है, उनको साधना के मार्ग में अवरोध आते हैं। इन अवरोधों और भय स्थानों को कैसे हटाया जाए यह वे नहीं जानते, तब वे गुरु की खोज करने लगते हैं। किसी बड़े शहर में किसी आदमी को किसी छोटी गली में बनाए अपने नए निवास स्थान में 6-7 बार आने जाने के बाद भी अगली बार वापस आने में दिन के समय भी तकलीफ महसूस होती है। सड़कों और मोहल्लों में मार्ग खोजने में भी तकलीफ होती है, तो बंद आँख से अकेले चलने वाले साधक को उस्त्रे की धार जैसे आध्यात्मिकता के मार्ग में आने वाले विघ्नों की तो बात ही क्या है। मन के प्राकृत स्वभाव का पूर्णतः नवसर्जन करना ही चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है, मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है, मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र्य को, वर्तन को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। बापूजी कहते हैं कि एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, वह बोला, मैंने वडोदरा में आपके दर्शन किए थे और फिर इधर आया हूं। गुरुदेव ने कहा, क्या काम करते हो? उसने कहा, बाबा जी अब तो कुछ काम नहीं करता हूं, सेवा निवृत्त हुआ हूं, अब बस तपस्या करता हूं। जवान था, होगा 35-38 वर्ष का, जेंटलमैन था। मैंने कहा, अच्छा तपस्या करते हो, तो अब क्या नियोजन है तपस्या का? वह बोला, वह हरिओम आश्रम है सूरत में, अब 6 महीने वहां के मौन मंदिर में बैठूंगा, आपके दर्शन करने आया हूं, आप जो कहो मैं करूंगा। गुरुदेव ने कहा, तुम 6 महीने बैठो चाहे 6 साल बैठो, बैठ के अंदर क्या करोगे? उसने कहा, मेरे इष्ट है शंकर भगवान, उनका जप करूंगा, उनका ध्यान पूजन करूंगा। मैंने सोचा, इतना चल के आया है, दोपहर का समय है, कुछ तो इसको मिल जाए। तो मैंने कहा, जब तब ध्यान जो कुछ है तो करना, लेकिन पहले थोड़ा सत्संग कर ले, सत्संग करके शिव तत्व को कुछ समझ ले, फिर तुझे जो करना है वह करना। वह बोला, बाबा जी अच्छा है, ठीक है, अभी तो मेरा नंबर लगा है मौन मंदिर में, 6 महीना तो उसमें रहूंगा, बाद में किसी शिविर में आऊंगा। मैंने कहा, तेरे भाग्य में अभी ठोकरे खाना है, जाओ ठोकर खाओ। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, जिसने साधु संगति रूपी शीतल और स्वच्छ गंगा में स्नान किया है, उसको दानों से, तीर्थों से, तपस्याओं से और यज्ञों से क्या प्रयोजन है। जिनके राग नष्ट हो गए हैं, संदेह कट चुके हैं एवं चित जड़ ग्रंथियां नष्ट हो चुकी है, ऐसे साधु पुरुष यदि विराजमान है तो तप और तीर्थ करने से क्या प्रयोजन है। जो सत्संग को पीठ देके मनमाने ढंग से तपस्या करते हैं, उन्हें ठोकरे ही खानी पड़ती हैं। घाट वाले बाबा कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जिसको समझ में आ गया, उसका बेड़ा पार हो गया। उतना नहीं समझा तो समझो उसके भाग्य में थोड़ी ठोकरे हैं, तो वह उपनिषद पढ़ ले, कठवल्ली, उससे भी ज्ञान नहीं होता है तो फिर दूसरी उपनिषद समझ ले, उसमें भी रुचि नहीं होती, वह आत्मज्ञान की तरफ नहीं आता तो समझो उसके भाग्य में ज्यादा ठोकरे हैं। जिसको ठोकरे खाना बाकी है वह इस ब्रह्म वाक्य को नहीं समझ सकता। महावाक्य को समझ ले बस निहाल हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ यह गजल दोहराया करते थे, अगर है शोक मिलने का अपस की रमज पाता जा, हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भसम तन पे लगाता जा। अगर है शोक मिलने का, अपना शरीर में जो अहम है, शरीर में, पदार्थों में, जगत में जो ममत्व है, उसको मिटा दे तो फिर पता चलेगा कि तेरे मेरे में अनेक रूपों में जो भास रहा है, यह सब उसी का चमत्कार है, सब वही रूप है।